प्यासी आत्मा की भी तृप्ति है यही वचन। स्वर्गीय जीवन रोटी आंखों की ये ज्योति, ये सत्य वचन, ये जीवित वचन, सबसे उत्तम ज्ञान यही है। आओ सुने सत्य वचन।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोता, प्रभु यीशु मसीह का वचन ही वो सत्य वचन है जो हमें आत्मिक सामर्थ और शांति देता है और अंधकार में भटकने से हमें बचाता है। तो आइए हम कुछ देर के लिए आज के वचन को ध्यान पूर्वक सुने और अपने जीवन के लिए आत्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करें।
प्रिय श्रोता, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको हमारा नमस्कार। आशा है आप प्रभु की दया से कुशल हैं और आज के सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। मित्रवर, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया करते हैं। आज हम अपने सत्य वचन बाइबल अध्ययन के अंतर्गत इतिहास की प्रथम पुस्तक का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। मित्रवर, इतिहास की ये पुस्तकें प्रथम तथा द्वितीय इतिहास के नाम से जानी जाती हैं। ये पुस्तकें अनेक बातों में समान प्रतीत होती हैं। इनमें राजा शाऊल से लेकर राजा सिदकिया तक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखा जा सकता है। तब क्या ये राजाओं की पुस्तक की पुनरावृत्ति है? नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। यूनानी अनुवादकों ने इतिहास की पुस्तकों को जो शीर्षक दिया है वो है छूटी हुई बातें। उन्होंने इसको छूटी हुई बातें नामक शीर्षक दिया है और ये शीर्षक मुझे अच्छा लगता है, किंतु ये पर्याप्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इतिहास ग्रंथ की पुस्तकों में उससे भी अधिक सामग्री है जो अन्य पुस्तकों में छूट गई है। सो ये शीर्षक भी अधूरा है, पर्याप्त नहीं है। हम देखेंगे कि जो बातें पहले तथा दूसरे शामुएल तथा पहले तथा दूसरे राजाओं की पुस्तकों से छूट गई हैं उन्हें परमेश्वर के आत्मा ने इतिहास की पुस्तकों में विस्तार पूर्वक बताया है। उदाहरण स्वरूप, प्रथम इतिहास में राजा दाऊद पर विशेष बल दिया गया है तो दूसरे इतिहास में दाऊद की पीढ़ी अर्थात उसके वंशजों पर। इतिहास की पुस्तक में दाऊद के पाप का अभिलेख नहीं है। आप कहेंगे क्यों दाऊद के पाप का अभिलेख इतिहास की पुस्तक में क्यों नहीं है? मित्रवर, क्योंकि परमेश्वर ने उसे पूर्णतः क्षमा किया और उसके पाप को भुला दिया। सो मित्र, परमेश्वर पिता न केवल क्षमा करते हैं वरन भुला भी देते हैं। परमेश्वर पिता इसी प्रकार से पाप की क्षमा देते हैं। वो न केवल पापों को क्षमा करते वरन पाप को भुला भी देते हैं। राजाओं की पुस्तक में इसराइल राष्ट्र का इतिहास राज सिंहासन से आरंभ होता है और इतिहास की पुस्तक में ये इतिहास वेदी से आरंभ होता है। दोनों पुस्तकों में दृष्टिकोण भिन्न भिन्न है। राजाओं की पुस्तक राजनीतिक इतिहास बताती है और इतिहास की पुस्तकें धार्मिक इतिहास की चर्चा करती हैं। इतिहास राजाओं की पुस्तकों की व्याख्या है। हम राजाओं की पुस्तक में बार बार ये वाक्यांश पाते हैं, क्या ये इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है? राजाओं की पुस्तक हमारे समक्ष मानव दृष्टिकोण को रखती है, परंतु इतिहास ग्रंथ हमारे समक्ष परमेश्वर के दृष्टिकोण को रखता है। जहां तक इसके लेखक का प्रश्न है, संभवतः एज्रा शास्त्री इतिहास का लेखक है और इसका लेखन काल 450 ईसा पूर्व है। इसकी रचना बेबीलोन की बंधुआई के समय हुई है। सो एक संक्षिप्त इतिहास हमने इतिहास की पुस्तक का आपको दिया है। सो आइए अब एक संक्षिप्त दृष्टि इसकी रूपरेखा पर भी डाल लेते हैं। पहले इतिहास की पुस्तक के 1 से 9 अध्यायों में हम वंशावलियों के विषय में पढ़ते हैं। 10वें अध्याय में शाऊल का शासनकाल और 11 से 29 अध्यायों में राजा दाऊद के शासनकाल के विषय में पढ़ेंगे। सो इसी परिचय व रूपरेखा के साथ हम इतिहास की प्रथम पुस्तक के अध्ययन को आरंभ करते हैं। सो आइए हमारे साथ देखिए प्रथम इतिहास जो पुराने नियम में है, प्रथम इतिहास की पुस्तक उसका प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय का शीर्षक है वंशावलियां। मित्रवर, इतिहास की प्रथम पुस्तक के 1 से 9 अध्यायों में हमें केवल वंशावलियों से परिचित कराया गया है। असंभवतः यह आपके लिए अरुचिकर और उबाने वाला हो सकता है, किंतु पहला इतिहास उसके प्रथम अध्याय के 1 से 4 पद अनेक बातों में परमेश्वर के वचन के महत्वपूर्ण संदेशों में से हैं। ध्यान दीजिए ये किस प्रकार आरंभ हो रहा है। पहला इतिहास उसका पहला अध्याय 1 से 4 पद देखिए। आदम, शेत, एनोश, केनान, महललेल, येरेद, हनोक, मतुशला, लेमेक, नूह, शेम, हाम और येपेत। अब सुनने में तो आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि इन नामों से हमारा क्या संबंध है, हमें इनकी जानकारी से क्या लाभ। किंतु मेरे मित्र, यहां उन लोगों के नाम हैं जिन्हें हम उत्पत्ति की पुस्तक के 1 से 8 अध्यायों में पढ़ चुके हैं और जो नीति उत्पत्ति की पुस्तक में अपनाई गई है वही नीति यहां भी अपनाई गई है। यहां भी बहिष्कृत वंशावली का उल्लेख पहले किया गया है और तत्पश्चात उस वंशावली का अनुसरण किया गया है जो हमें प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचाती है। 5 से 7 पदों में येपेत की वंशावली तथा 8 से 15 तक हाम की वंशावली तथा 17 से 27 पदों तक शेम की वंशावली का वर्णन है। ये तीनों नूह के पुत्र हैं और जल प्रलय के पश्चात इन्हीं के द्वारा मानव जाति का विकास हुआ है। सो अब आप बताइए कि ये नाम जो इतिहास की पुस्तक के आरंभ में दिए गए हैं महत्वपूर्ण हैं या नहीं है। येपेत तथा हाम की वंशावली वहीं समाप्त हो जाती है किंतु शेम की वंशावली आगे चलती है। 17 से 26 पदों में हम यहां पर पढ़ते हैं, लिखा है, शेम के पुत्र इलाम, अशूर, अर्पशद, लूद, आराम, ऊस, हूल, गेतेर और मेशेक उत्पन्न हुए। अर्पक्षद ने शेलहा और शेलहा से एबेर उत्पन्न हुआ और एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम प्लेग रखा गया क्योंकि उसके दिनों में पृथ्वी बंट गई थी। उसके भाई का नाम योगतान था और योगतान से अलमोदाद, शुलेप, हस, शर्मा, वेत, येरद, हदोराम, उजाल, दिकला, एबाल, एबिमाइल, शबा, ओपीर, हबीला और योबाब उत्पन्न हुए। ये सब योगतान के पुत्र थे। 24वें पद में हम पढ़ते हैं, शेम, अर्पक्षद, शेलहा, एबेर, पेलेग, रू, सरूग, नाहोर, तेरह, अब्राम तथा इब्राहिम। तो इस प्रकार से यहां 28वें पद से आगे प्रभु के महान सेवक इब्राहिम की वंशावली का वर्णन किया गया है। इश्माइल और कतूरा की वंशावली के पश्चात इब्राहिम के पुत्र इसहाक की वंशावली का वर्णन है जो मसीह यीशु तक चलेगी। देखिए 28वें पद में, इब्राहिम के पुत्र इसहाक और इश्माइल थे, उनकी वंशावलियां ये हैं। 29वें पद से आगे हम इश्माइल की वंशावली के विषय में पढ़ते हैं और फिर 32वें पद में लिखा है, इब्राहिम की रखेल कतूरा से जिम्रान, योक्षान, मदान इत्यादि पुत्रों का जन्म हुआ। फिर 34वें पद में लिखा है, और इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक के पुत्र एसाव और इसराइल। और फिर 35वें पद से हम एसाव के पुत्रों के विषय में पढ़ते हैं। सो प्रथम अध्याय में इसहाक के पुत्र एसाव की वंशावली का वर्णन है तथा दूसरा अध्याय इसराइल अर्थात इसहाक के दूसरे पुत्र याकूब की वंशावली का उल्लेख करता है। तो प्रथम इतिहास के दूसरे अध्याय के प्रथम पद को देखें, यहां लिखा है इसराइल के पुत्र ये हैं, रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जबुलून, दान, यूसुफ, बिन्यामीन, नप्ताली, गाद और आशेर। ये इसराइल के 12 पुत्र हैं जो आगे चलकर इसराइल राष्ट्र कहलाए। यही वंशावली क्रम 9 अध्याय तक चलेगा। 3 से 12 पदों में इसराइल के ज्येष्ठ पुत्र यहूदा के पुत्रों के विषय में हम पढ़ते हैं। 3 से 12 में इस प्रकार से वर्णन है, यहूदा के पुत्र थे एर, ओनान और शेला। उसके ये तीनों पुत्र बतशू नामक एक करानी स्त्री से उत्पन्न हुए और यहूदा का ज्येष्ठ पुत्र एर तो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, इस कारण यहोवा ने उसको मार डाला। यहूदा की बहू तामार से पेरेस और जेरहा उत्पन्न हुए। यहूदा के कुल 5 पुत्र हुए। पेरेस के पुत्र थे हेस्रोन और हामूल और जेरहा के पुत्र थे जिमरी, ऐतान, हेमान, कलकोल और दारा, सब मिलाकर 5। ये कर्मी का पुत्र आकार, जिसने अर्पण की वस्तु के निषेध का उल्लंघन किया और इसराइलियों के कष्ट का कारण ठहरा, और ऐतान का पुत्र अजरिया था। अब यहां हम देखते हैं कि संपूर्ण इतिहास को बड़े स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत किया गया है, कुछ छुपाया नहीं है। 9वें पद में पढ़ते हैं, हेस्रोन के जो पुत्र उत्पन्न हुए वे यहराम, मेल, राम और कलूवे थे, और राम से अम्मीनादाब और अम्मीनादाब से नहशोन उत्पन्न हुआ जो यहूदा वंशियों का अगुआ बना, और नहशोन से सलमा, सलमा से बोअज, बोअज से ओबेद और ओबेद से ईशे उत्पन्न हुआ, और ईशे से उसका ज्येष्ठ पुत्र एलियाब, दूसरा अबीनादाब, तीसरा शिमा, चौथा नतनेल, 5वां रद्दे, 6वां ओसेस और 7वां दाऊद उत्पन्न हुआ। मित्रवर, जब हम 13 से 15 पदों पर पहुंचते हैं तो हमारा परिचय ईशे के पुत्र दाऊद से होता है, और यहां इस बिंदु से हम दाऊद की वंशावली का अनुसरण करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु राजा दाऊद के पुत्र कहलाए। शरीर की दृष्टिकोण से या शरीर के भाव से वो दाऊद के पुत्र कहलाए हैं, इसलिए हम दाऊद की वंशावली का अनुसरण करेंगे, क्योंकि हमारा केंद्र बिंदु उद्धार और उद्धारकर्ता है, और इसलिए हम उद्धारकर्ता से संबंधित बातों पर ध्यान लगाएंगे। अध्याय 3 में राजा दाऊद के परिवार का अभिलेखा है। सो आइए अध्याय 3 में हम प्रवेश करते हैं, जहां इस प्रकार से पाते हैं अध्याय पहला इतिहास उसका 3रा अध्याय 1 से 3 पदों को मेरे साथ देखें। दाऊद के पुत्र जो हेब्रोन में उससे उत्पन्न हुए वे ये हैं, ज्येष्ठ पुत्र यमनोन, यज्रेली, अनीहोम से, ये उसकी पत्नी का नाम है, इज्रेली, अहिनोहम, दूसरा दानियल, कर्मेली, अबिगैल से, अबिगैल उसकी दूसरी पत्नी का नाम है, तीसरा अबशालोम, गशूर के राजा तलमे की पुत्री माका से, ये उसकी तीसरी पत्नी है माका, चौथा अदोनिया हग्गीत से, अदोनिया हग्गीत उसकी चौथी पत्नी, और पांचवा शपतिया अबीतल से, और 6वां यित्राम उसकी पत्नी एग्ला से उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार से ये दाऊद के 6 पुत्रों का वर्णन है जो हेब्रोन में उत्पन्न हुए और उसकी 6 पत्नियों से अलग अलग उत्पन्न हुए, और जो यरूशलेम में उत्पन्न हुए वे ये हैं। आइए 4वें पद से देखें, हेब्रोन में उसके 6 पुत्र उत्पन्न हुए और वहां उसने 7.5 वर्ष राज्य किया और यरूशलेम में उसने 33 वर्ष राज्य किया। और यरूशलेम में उसके ये पुत्र उत्पन्न हुए, शिमा, शोबाब, नातान और सुलेमान। ये चारों अम्मीएल की पुत्री बतशेवा से उत्पन्न हुए। सो मेरे मित्र, इसके अतिरिक्त दाऊद के 9 पुत्र और थे जिनका वर्णन शमूएल और राजाओं की पुस्तक में नहीं है। 6 से 8 पदों में देखें, और यिबार, एलिशामा, एलिपेलेत, नोगाह, नेपेग और यापी। एलिशामा, एलियादा और एलिपेलेत ये 9 थे। इनका वर्णन हम शमूएल और राजाओं की पुस्तक में नहीं पाते हैं, तो ये विशेष जानकारी इतिहास की पुस्तक में हमको प्राप्त होती है जो दाऊद के पुत्रों के विषय में है। 5वें पद में आपने दाऊद के पुत्र शिमा और शोबाब का नाम सुना है? हम तो केवल सुलेमान के विषय में जानते हैं, हमने इन 9 पुत्रों के विषय में भी पूरी तरह से नहीं जाना है। जो बाइबल पाठक हैं वे विशेष रूप से राजा सुलेमान के विषय में जानते हैं जो बैतशेबा से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था। किंतु यहाँ पर नातान का भी वर्णन है। नातान कौन था, क्या आप इसके विषय में जानते हैं? हाँ मित्र, मैं भी इसके विषय में नहीं जानता था, किंतु अध्ययन करने के पश्चात मुझे इसकी जानकारी प्राप्त हुई, तो मैं भी इस जानकारी को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। नातान भी दाऊद का पुत्र था, और यदि आप प्रभु यीशु मसीह की वंशावली का अध्ययन करें जिसका अभिलेख हमें लूका रचित सुसमाचार में दिया गया है, तो वहां आप देखेंगे कि मसीह यीशु की वंशावली सुलेमान से ना चलकर नातान से चलती है। यीशु की माता मरियम, इनकी वंशावली नातान से चलती है, और जबकि यूसुफ की वंशावली राजा सुलेमान से चलती है। इस बात पर हमको ध्यान देना है, यीशु की माता मरियम की वंशावली दाऊद के पुत्र नातान से चलती है, और यूसुफ की वंशावली जो शरीर के भाव से मरियम के पति थे उसकी वंशावली सुलेमान से चलती है, किंतु ये दोनों राजा दाऊद के पुत्र हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में हम देखते हैं कि मसीह यीशु सुलेमान द्वारा दाऊद के सिंहासन के अधिकारी बनते हैं, और नातान के द्वारा वह दाऊद के सिंहासन का पद खून के रिश्ते से प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार में हम देखते हैं कि मसीह यीशु सुलेमान के द्वारा दाऊद के सिंहासन के अधिकारी बनते हैं, क्योंकि दाऊद का सिंहासन सुलेमान के द्वारा आगे बढ़ता है, और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उस सिंहासन के अधिकारी सुलेमान के द्वारा बनते हैं। किंतु नातान के द्वारा वह दाऊद के सिंहासन का पद खून के रिश्ते से, लहू के रिश्ते से प्राप्त करते हैं। ये अत्यंत आवश्यक बात है, इसकी जानकारी हमें आवश्यक रूप से होनी चाहिए, क्योंकि सुलेमान के परिवार में यकोनिहा अथवा कोनिया नामक व्यक्ति के विषय में प्रभु परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी की है। आइए आप मेरे साथ देखिए यर्मिया नबी की पुस्तक उसका 22वां अध्याय, यर्मिया नबी की पुस्तक उसका 22वां अध्याय 28 से 30 पद। मुझे आशा है आपको मिल गया है। सो मेरे साथ देखिए, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्या ये मनुष्य कोनिया एक तुच्छ और टूटा हुआ पात्र है? क्या वह एक ऐसा पात्र है जिसे कोई नहीं चाहता? फिर वह और उसके वंशज क्यों एक ऐसे देश में फेंक दिए गए जिसे वे नहीं जानते थे? हे देश, 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 यहोवा का वचन सुन। यहोवा यूं कहता है, इस मनुष्य को निर्वंश लिखो, ऐसा मनुष्य जो अपने जीवन काल में संपन्न नहीं होगा, क्योंकि इसके वंश का कोई भी पुरुष दाऊद के सिंहासन पर बैठकर अथवा पुनः यहूदा का शासक बनकर संपन्न नहीं होगा। सो ये भविष्यवाणी इस व्यक्ति के विषय में की गई है, ये यर्मिया नबी के द्वारा की गई, और यहां से सुलेमान की वंशावली टूट जाती है। और इस प्रकार हम देखेंगे कि यूसुफ शारीरिक रूप से यीशु के पिता प्रमाणित नहीं होते, और ये प्रमाणित करता है कि प्रभु यीशु का जन्म कुंवारी से हुआ। क्योंकि प्रभु के विषय में हम परमेश्वर के पवित्र वचन में पढ़ते हैं कि यीशु का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा संपन्न हुआ। क्योंकि लूका रचित सुसमाचार में हमें इस विषय में बताया गया है, जब स्वर्गदूत मरियम के पास पहुंचता है और वो अभिवादन करता है, और उसके पश्चात स्वर्गदूत मरियम से इस प्रकार से कहता है, लूका रचित सुसमाचार उसका प्रथम अध्याय 30वें पद से आगे मेरे साथ देखिए, यहाँ इस प्रकार से बताया गया है, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, अर्थात मरियम से कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा, और वह याकूब के घराने पर अनंत काल तक राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो कुंवारी ही हूं। स्वर्गदूत ने उससे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर आच्छादित होगा। इसी कारण वह पवित्र पुत्र जो उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। सो मेरे मित्र, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से जन्म लेने के कारण परमेश्वर के पुत्र कहलाए, और इसलिए वो कुंवारी से जन्मे। और इस प्रकार इतिहास की पुस्तक हमें धीरे धीरे जगत के उद्धारकर्ता परमेश्वर पुत्र, जो शरीर के भाव से दाऊद की संतान है, उनकी ओर ले जा रही है। और इसलिए यह अध्याय मेरे लिए और आपके लिए रुचिकर बनता जाता है। मेरा विश्वास है कि इस अध्याय के अध्ययन के द्वारा आप लाभ उठा रहे हैं। समस्त इतिहास की पुस्तक मेरे और आपके आत्मिक ज्ञान के लिए अत्यंत लाभकारी है। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस अध्ययन में पूरी तरह से ध्यान लगा सकें और परमेश्वर के परिदृश्य को, उनके दृष्टिकोण को समझ सकें, और इस पुस्तक के अध्ययन से आत्मिक लाभ उठा सकें। अब इन वचनों के साथ हम आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। इस विषय में यदि आपका कोई प्रश्न है या आप और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप एक पोस्ट कार्ड पर हमको लिखकर भेजें, हम आपकी सहायता करेंगे। अब प्रभु आपको आशीष दे। आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। प्रभु की शांति और उसका अनुग्रह सदा आप पर बना रहे। आमीन।
रहता क्यों इतना उदास। तेरे गमों को लेकर मसीह देगा तुझे हर खुशी, तेरे गमों को लेकर मसीह देगा तुझे हर खुशी। कदमों के पास बुलाता है मसीह, सुन तो उसकी आवाज, सुन तो उसकी आवाज, सुन तो उसकी आवाज।
आज का कार्यक्रम सुनने के लिए धन्यवाद श्रोता। हमें आशा है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आत्मिक रूप से प्रोत्साहन मिला होगा। यदि आप इस विषय में अपनी आत्मिक उन्नति के लिए अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक पोस्टकार्ड के द्वारा तुरंत इस पते पर हमसे संपर्क करें। कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। इसी के साथ आज के हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।